नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद अध्याय संख्या 4। अध्याय का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप का आंतक। श्लोक संख्या 4। एवं लब्ध वरो दैत्यो बिभ्रत हेममयं वपु भगवत्याकरोद्वेषम् भ्रातुवर्धमनुस्मरन् एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रत हेममयं वपुः भगवत्याकरोद्वेषम् भ्रातुवर्धमनुस्मरन् एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रत हेममयं वपुः भगवद्करोद्वेषम् धातुवधमनुस्मरन्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। एवं इस प्रकार लब्धवरः वांछित वरदान पाकर दैत्यः हिरण्यकश्यपु बिभ्रत प्राप्त करके हेममयम सोने की कांति वाला वपुः शरीर भगवती भगवान विष्णु के प्रति आक्रोध निभाया, द्वेषम ईर्ष्या भ्रातुवधम अपने भाई के वध को अनुस्मरण सदैव सोचते हुए। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा, जिससे वह भगवान विष्णु से ईर्ष्यालु बना रहा। तात्पर्य, आसुरी मनुष्य इस ब्रह्मांड में प्राप्त होने योग्य सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान से ईर्ष्यालु बना रहता है। इसके पहले है श्लोक संख्या 3, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसका अनुवाद है। तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहां से विदा हो गए। हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भगवत श्रीमद भागवत क्लास में। कल ऋषि कुमार वो बता रहे थे कार्तिक माहात्म्य में, अगर कोई कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। क्या बताया उन्होंने कल, अगर कोई कार्तिक मास में प्रतिदिन हरि कथा सुनता है तो उसको केवल भागवत कथा सुनने का ही नहीं, पूरे के पूरे 18 पुराणों को पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है। देखो वैसे टाइम हमारे पास बहुत कम है हमारे पास मुश्किल से भागवत हम थोड़ी देर से पढ़ सकते हैं। बस 30 दिन आना है भागवत क्लास में, सुन लेना है, 18 पुराण का लाभ मिल गया फिर आराम से तो ये जो 7वें स्कंद का 4वां अध्याय है, ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु का आंतक। तो आज भागवत कक्षा में एक आंतकवादी की चर्चा करेंगे हम। हिरण्यकश्यपु दैत्यों में श्रेष्ठ, सबसे महान बड़ा आंतकवादी अभी तक का जो हुआ है हिरण्यकश्यपु। लेकिन क्योंकि वो मुख्यतः भगवान के भक्त हैं, इसलिए अपने आंतक से भी उन्होंने बहुत सी शिक्षाएं दे दी हमें। तो प्रसंग ये चल रहा है, उन्होंने खूब तपस्या की मंदार पर्वत पे 100 दिव्य वर्षों तक। इतनी तपस्या की कि उनका शरीर एक चींटियों का पहाड़ बन गया। उनकी चींटियों ने उनके शरीर के सारे मांस मज्जा को खा लिया, शरीर के अंदर का खून पी लिया, वो केवल हड्डियां रह गई। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उन पे अपना दिव्य जल छिड़का और उसके बाद क्या हुआ उनको जैसे याद बताया, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे सारे के सारे। हिरण्यकश्यप एक असुर भी था और एक बहुत अच्छा वकील था। कोई ब्रह्मा जी ने बोल दिया था मैं तुम्हें अमृत तत्व का तो वरदान नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यप ने अपना दिमाग लगाया, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे सारे परमोटेशन कम्बिनेशन ले लिए, ना घर में हूँ ना बाहर मरूँ, ना सुबह दोपहर शाम कभी भी, ना मनुष्य से ना पशुओं से ना पक्षी से ना सर्पों से, सब तरह के उसने कम्बिनेशन लेके उसने बोल दिया अब मैं अमर हो गया, अपने वो पूरा फुल प्रूफ। जब उन्होंने वरदान ले लिया जो भी पॉसिबल था, ना मुझे बुढ़ापा आए, ना मुझे बीमारी आए, ना मैं किसी को तंग कर सकूं, जो मैं चाहूं वो हो जाए, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, आप जो सोच सकते हैं सारे के सारे वरदान उसको मिल गए। तो उसके बाद वर देने के बाद ब्रह्मा जी तो वापिस चले गए और हिरण्यकश्यप क्या हुआ, एवं लब्ध वरो दैत्यो, इस तरह से वो जो दैत्य था उसको लब्ध वरो ये वरदान प्राप्त कर लिया। विभ्रद हेममयम वपु, अब उसने क्या प्राप्त कर ली, हेममयम सोने की तरह चमकता हुआ उसका देह, कहां उसका देह चींटियों का पहाड़ बन गया था और अब उसका देह सोने की तरह चमक रहा था। लेकिन कमी क्या थी, भगवत अकरो द्वेषम, अभी भी वो भगवान से द्वेष कर रहा था। क्यों द्वेष कर रहा था, भ्रातृवधम अनुस्मरण, जो उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था विष्णु ने शुक्र रूप लेकर, उसको वो भूल नहीं रहा था, उसको कभी नहीं भूला। तो प्रभुपाद जी ने एक वाक्य का तात्पर्य दिया लेकिन बहुत शक्तिशाली वाक्य तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने लिखा, आसुरी मनुष्य इस ब्रह्मांड में प्राप्त होने योग्य सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान से ईर्ष्यालु बना रहता है। जो भी पॉसिबल थे ऑपुलेंसीज ऐश्वर्य वो हिरण्यकश्यप को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपने द्वेष को बनाए रखा। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑपुलेंट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स वॉज हिरण्यकश्यप, लेकिन फिर भी उसको विष्णु से द्वेष बना रहा क्योंकि वो भूल नहीं पाया कि इस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया था। तो आज हम एक बहुत विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है ईर्ष्या द्वेष। सुनने में द्वेष कहा जाता है इज द मोस्ट नेगेटिव इमोशन, डार्केस्ट इमोशन, प्रेम का बिल्कुल विपरीत द्वेष। तो बुरा मत माने, आप सबसे औपचारिकतावश कुछ प्रश्न पूछेंगे, हमारे मालूम है यहाँ पे वो प्रश्न लागू नहीं होते, फिर भी औपचारिकतावश प्रश्न पूछ लूंगा। आप में से कितने भक्तों को लगता है कि आपके हृदय में थोड़ा बहुत द्वेष है, आई मीन बुरा मत मानना, अरे क्या बात, फुल 100%। चलो मुझे मेरी हिचक दूर हो गई, मैं सोचा था मैं और दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। आप में से कितने भक्तों को ये लगता है कि कोई आपसे द्वेष करता है, संसार में बहुत से लोग मुझसे द्वेष करते हैं, कोई ना कोई द्वेष करता है, काफी लोग हैं। आप में से कितने लोग इस द्वेष से मुक्त होना चाहेंगे, जब हम द्वेष से मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल हल्के पक्षी की तरह उड़ेंगे। और आप में से कितने लोग उस टेक्निक को जानना चाहते हैं कि कोई अगर हमसे द्वेष करे तो उसको कैसे टैकल करना है, अरे वाह फिर तो एक क्लास हमारे सुनने होंगे, तो सुनेंगे और पाएंगे, दिखते हैं बड़े लंबा विषय है कितना समय हम कवर कर सकते हैं। तो ये द्वेष जो है ये भौतिक जगत का सबसे मुख्य लक्षण है। द्वेषी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता। हिरण्यकश्यप इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी दुखी है। और हम लोग जो इस भौतिक जगत में आए हैं, हमें आध्यात्मिक जगत से द्वेष के कारण निकाला गया है। आध्यात्मिक जगत का मुख्य लक्षण क्या है, वहां कोई द्वेष नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तीसरे स्कंध के तात्पर्य बताते हैं वहां के फूल और पत्ते भी द्वेष नहीं करते। इसका अर्थ यह है आध्यात्मिक जगत में मुख्यतः 5 रसों में भगवान के साथ भक्तों का संबंध है। शांत रस का भक्त वात्सल्य रस के भक्त के साथ द्वेष नहीं करता, वात्सल्य रस का भक्त माधुर्य रस के भक्तों के साथ द्वेष नहीं करता। भौतिक जगत में ऐसा नहीं है, जब एक लड़के का विवाह होता है तो वात्सल्य रस में स्थित माता का द्वेष बहू से हो जाता है, जो कि माधुर्य रस में है। और माँ और बहू के बीच में ये चलता रहता है कि मेरे बेटे को छीने ना हो, है ना। तो माधुर्य रस और वात्सल्य रस में लड़ाई होती है, द्वेष है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जब राधा और कृष्ण निकुंज में बैठे हैं तो घास जो है वो भी चेतन है। अगर यहाँ की घास चेतन हो जाए, बोले क्यों भाई मेरे सिर पर क्यों चढ़ रहे हो, चुभेगी हमें, चढ़ भाग यहाँ से। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो घास भी है, घास का तिनका है, वो भी प्रफुल्लित हो जाता है राधा और कृष्ण की सेवा करके। उसको द्वेष नहीं है कि मैं अभी ऊपर बैठूंगा झूले में इनके साथ, ऐसा नहीं है। उनको उसी को देखकर खुशी हो रही है। तो अध्यात्म जगत में ना तो एक रस में स्थित भक्तों का आपस में द्वेष है, मधुमंगल का श्रीधाम के साथ कोई द्वेष नहीं है। हाँ, राधा रानी और चंद्रावली का लगता है जेलेसी है, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल है। वो इसलिए है, इस जेलेसी से कृष्ण का आनंद बढ़ता है। तो वहां कोई आपस एक ही रस में स्थित या अलग अलग रस में स्थित भक्तों का आपस में कोई द्वेष नहीं है। लेकिन बौद्धिक जगत में हर कोई एक दूसरे से द्वेष कर रहा है, तभी हम यहां पर हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारतन भारत। तो इच्छा और द्वेष के कारण हम भगवान से द्वेष करते हैं। हम लोग कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को तपस्या कर रहे हैं कार्तिक मास में। कोई आप में से मानना चाहेगा कि हम कृष्ण से द्वेष करते हैं? हमारे घर में विग्रह हैं भगवान के, उनको हम भोग लगाते हैं। आप में से कितने भक्त मानना चाहेंगे कि हम कृष्ण से द्वेष करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, इष्ट देव हैं वो हमारे, उनके लिए नंगे पांव परिक्रमा करते हैं धूप में, तो क्या हम भगवान से द्वेष करते हैं? क्या माना आप लोगों का, क्या आप कृष्ण से द्वेष करते हैं? क्या हम कृष्ण से द्वेष करते हैं? निश्चित रूप से हम कृष्ण से द्वेष करते हैं, तभी तो यहां पर हैं। अच्छा, जब हम किसी से द्वेष करते हैं, क्यों करते हैं, कारण क्या है द्वेष का? किसी व्यक्ति को देखकर हमें द्वेष क्यों होता है? हाँ, उसके पास ज्यादा ऑपुलेंस है और ज्यादा फेमस है, ज्यादा लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, और उसको ज्ञान ज्यादा है, है? सुंदर है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी पोस्ट पे है, मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसकी बीवी मेरी बीवी से ज्यादा सुंदर है, उसके पति के बाल मेरे पति के बाल से ज्यादा हैं, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी है, है ना। कितने द्वेष के कारण है। इसी ढंग से हमें कृष्ण से भी द्वेष होता है कि कृष्ण का आनंद असीमित है, मेरा आनंद सीमित है। चार रसगुल्ले खाने के बाद पेट खराब, और भगवान का भोग में देखो इतने बड़े, मैं वो दिन कब आएगा जब पूरी पूरी राजभोग की थाली में खा जाऊंगा? वो दिन कब आएगा जब पूरा पूरा अन्नकूट मेरे लिए होगा? इच्छा यही होती है, सारा सारा हलवा मैं खा जाऊं, पहाड़ हलवे का पहाड़, लेकिन थोड़ा सा मिलता है। कितना द्वेष होता है। अगर कोई प्रसाद बांट रहा है, मेरे साथ वाले को दो रसगुल्ले दे दिया, मुझे एक दिया, कितना द्वेष होता है? होता नहीं होता। तो मेरा आनंद उसके आनंद से कम क्यों? इसी द्वेष के कारण कि भगवान का आनंद, कृष्ण का आनंद असीमित है, हम लोग यहां पर आए, हम उनसे कंपीट करते हैं। जब कोई बद्ध जीव इंद्र तृप्ति का प्रयास करता है, तो इंद्र तृप्ति करने का प्रयास का अर्थ है कृष्णा से कंपटीशन करना। और इस इंद्र तृप्ति की जो परिकाष्ठा है मैथुन, मैथुन का अर्थ है हम अपने भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष की सर्वोत्तम व्यक्ति, हाइएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनवी अगेंस्ट कृष्णा इज मैथुन। क्योंकि मैं सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम नियंता, प्रोपराइटर बनना चाहता हूं। देखिए, हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, हम इस भौतिक जगत की प्रकृति भगवान ने इस ढंग से बनाई है कि हम परम नियंता, परम स्वामी और परम भोक्ता नहीं बन सकते। लेकिन वो द्वेष हमारे अंदर रहता है। जो कृष्ण के प्रति द्वेष है, वो हमारा प्रत्येक जीवों के प्रति द्वेष के रूप में प्रकट होता है। अगर हम किसी भी जीव के प्रति द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं। तो कई बार हम भक्तों को गलत फहमी होती है कि कृष्ण से तो मुझे प्रेम है, राधा राधिका रमन से तो मुझे प्रेम है, लेकिन कुछ भक्तों से मुझे द्वेष है। चलता है नहीं। अगर हम कुछ भक्तों से भी द्वेष करते हैं, तो हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं, राधा राधिका रमन जी से द्वेष कर रहे हैं। और जब तक हम द्वेष कर रहे हैं, हम बहुत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम इस भौतिक जगत में ही रहेंगे। जो द्वेष है वो वास्तव में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से रोकता है। दिव्य ज्ञान हमें भक्तों के संग में प्राप्त होता है। भक्तों के संग का लाभ हम तब उठा सकते हैं जब हम उनके हृदय से प्रशंसा करेंगे, एक भक्तों के अंदर गुणों की प्रशंसा करेंगे, तभी हम उनसे सुनकर उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। एनमी का अर्थ होता है, द्वेष का अर्थ होता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं, और जो ये व्यक्ति ये बोल रहा है ये ठीक नहीं बोल रहा, इसलिए तो मैं बोलूंगा, ये सही नहीं सुना रहा, इसका चरित्र मैं जानता हूं, ऐसा है वैसा है। तो जैसे ही हमें किसी भक्त से द्वेष होगा तो हम उसके संग का लाभ नहीं उठा सकते। हम उससे नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, दे विल बी इंफॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग बहुत नॉलेज नोट कर लेंगे, ज्ञान इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। जो द्वेष है वो हमारे जो संचार है ज्ञान के संचार को वो रोक देता है, क्योंकि हम उस भक्त को एप्रिशिएट नहीं करते हैं हृदय से, तो उस भक्त के संग का हम लाभ नहीं उठा सकते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में अर्जुन को ज्ञान क्यों देते हैं, इदं तूते गुह्यतहं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं तुम्हें बहुत गहरा ज्ञान बता रहा हूं क्योंकि तुम द्वेष रहित हो। एक व्यक्ति दूसरे को अपने हृदय की बात तब बताता है जब वो उस पर ट्रस्ट करता है। तो कृष्ण अर्जुन पे ट्रस्ट कर रहे थे, तुम मेरे विशेष व्यक्ति हो, तुम्हें कोई द्वेष नहीं है, अब मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूं। और गुह्यतम ज्ञान क्या है कि कैसे इस भौतिक जगत से निकलकर कार्य करते हुए तुम आध्यात्मिक जगत में मेरे पास आ सकते हो। ज्ञानम विज्ञान सहितम जित ज्ञातवा मोक्षस्य अशुभात, इसको जानकर जो मैं गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूं तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका मुख्य कारण है हमारे हृदय में बैठा हुआ द्वेष, और कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ रही समस्याओं का कारण नहीं है। इसी ढंग से भगवान गीता के 3rd अध्याय के 32वें श्लोक में बताते हैं, ये त्वे तु अभ्य अनुसूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमोणास्तान तान विधि नष्टान चेतसा, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। द्वेष के कारण ना तो हम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, अगर कुछ समय तक ज्ञान समझ भी गए तो उसका पालन नहीं कर पाएंगे। ये समस्या हम देखे तो हम सबकी है। कई बार हमें लगता है बात तो बहुत अच्छी लिखी गीता में, बहुत अच्छा लिखा भागवतम में, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो हम कर नहीं पाते। तो भगवान गीता के 3rd अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहे हैं इसका कारण है ईर्ष्या। श्रीमद भागवतम में पहले ही स्कंद में बताया गया है, धर्म पूजितो कैडव परमा निर्मत सारणम सताम, ये जो भागवत धर्म है, भागवत ग्रंथ है, इसमें कोई भी कैटव धर्म की चर्चा नहीं की गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि कर्मकांड और ज्ञान कांड में व्यक्ति बदजीव तभी लगता है जब वो भगवान से द्वेष करता है। कर्मकांड का अर्थ है कि मैं खूब भोगूं, ये भगवान से द्वेष है। ज्ञान कांड का अर्थ है कि मैं भगवान बन जाऊं, ये भी द्वेष है। लेकिन ज्ञान कर्मादि अनावृतम शुद्ध भक्ति, श्रीमद भागवतम में शुद्ध भक्ति है, ज्ञान और कर्म के आवरण से रहित, और ये केवल निर्मत सराणम सताम, जो भक्त द्वेष से रहित हैं, मत्सर से रहित हैं, वो ही इसको इसका पान कर पाएंगे। तो भागवतम के मर्म को हम तभी समझ पाएंगे, तभी हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, तभी हमारे हृदय में क्रांति आएगी जब हम द्वेष रहित होकर सुनेंगे और इसका पठन करेंगे। बहुत आवश्यक है, अन्यथा कई वर्ष बीत जाएंगे, हम नवदा भक्ति में लगे रहेंगे लेकिन अपने हृदय से द्वेष को निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वहीं के वहीं रहेंगे, इसमें कोई हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भक्तों को बहुत सतर्क होना चाहिए, हृदय में जितने भी अनर्थ हैं इसका मूल द्वेष है, एनमी, काम क्रोध लोभ मत मोह मत्सर, मत्सर लास्ट में आता है। इसलिए भागवत में यह नहीं बोला गया निर्मत सराणाम सताम की जगह निर्काम सताम, कि जो भक्त लोग काम से मुक्त हैं, हमारे अंदर कुछ लस्ट भी हो जाए चल जाएगा, कुछ क्रोध भी चल जाएगा, लेकिन द्वेष है तो उससे हम भागवतम नहीं समझ सकते। लेकिन ये सारे के सारे अनर्थ उत्पन्न द्वेष से ही होते हैं, तो इसको हटा दिया या इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बाकी सब काम क्रोध लोभ मोह सब के सब समाप्त हो जाएंगे, हम बहुत तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसी गलत फीलिंग के कारण, द्वेष के कारण हम लोग अपराध करते हैं, है ना, हम दूसरों में फॉल्ट्स देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, मैं ही अच्छा बना रहूं। His Holiness राधानंद स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर हम किसी में फॉल्ट देखते हैं या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, इसका अर्थ यह है कि उस भक्त के ऊपर से कृष्ण ने अपनी कृपा छीन ली है। यही लक्षण है अगर किसी भक्त के ऊपर से कृपा छीन ली गई हो, और यही तरीका है कृपा छीनने का, समझिए, यही लक्षण है। अगर हम देख रहे हैं कि हमें हम दूसरों में फॉल्ट ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ये लक्षण है, वार्निंग है कि भगवान हमसे कृपा छीन रहे हैं, और यही तरीका है कृपा छीनने का, यानी कि भक्ति से बाहर होने का यही तरीका है कि हमें दूसरों में फॉल्ट नजर आना शुरू होंगे, और इसकी शुरुआत होती है द्वेष से। हम द्वेष के कारण किसी की अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, है ना। भक्ति सिद्धांत सेठ महाराज जो कथा सुनाते हैं ना, नंगू पेंचू वाले, है ना, एक पेंचू था बच्चा, इसका नाम कुछ पंचवर्तन ऐसा कुछ नाम था, ब्राह्मण परिवार से था, छोटा बच्चा था, बचपन में पेंचू पेंचू कहते थे, नंगा घूमता था, और नंगू पेंचू है। पढ़ते लड़ाइयाँ करते करते बचपन गांव में पढ़ पढ़ के बहुत बड़ा हो गया, और वो जज बन गया एक दिन। जज गांव का व्यक्ति आया, उसने कहा, अरे मालूम है वो पेंचू जज बन गया। कह रहा, क्या बात कर रहे हो यार, पेंचू जज बन गया। अरे पेंचू, नंगू पेंचू कहाँ जज बन जाएगा, वो तो नंगा घूमता था। कह रहा, देख के आया हूँ भाई, शहर में गया था, वो पेंचू जज बन गया। कहता, बन गया होगा, ऑनररी जज होगा, सैलरी नहीं मिलती होगी। द्वेष होता है कि ये नंगू, ये घूमने वाला। हम देखते कहीं नया भक्त आता है, अब ये भी आया बेचारा, उसके बाद आगे बढ़ गया, किसी ने बताया बहुत अच्छा प्रवचन, क्या प्रवचन देता, कुछ भी नहीं आता था उसका, नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन देता है, अच्छा कहीं से सुन के दे दिया होगा। तो हम अप्रिशिएट नहीं करते, हमें दूसरे में फॉल्ट देखने की आदत रहती है, तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक है। जैसे एक भक्त को थोड़ा सा भी द्वेष अपने हृदय में दिखाई दे, उसे सावधान हो जाना चाहिए, सावधान, क्योंकि भक्ति बहुत अंतरंग विषय है। हम नवदा भक्ति कर रहे हैं, भगवान कपिल कहते हैं, अगर कोई मुझे आरती दिखा रहे, बड़े स्टाइल से हम ऐसे भी आरती दिखाते रहे, यूं आरती तो दिखा रहे हैं और बाकी भक्तों से द्वेष कर रहे हैं, तो भगवान करे मुझे आपकी आरती नहीं चाहिए, मुझे आपकी आरती करके ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर को जला रहे हो, मेरे भक्तों से द्वेष करते हो और मेरे को आरती दिखा रहे हो, गेट आउट, कोई फायदा नहीं इसका। तो हमें अपने विचारों का मूल्यांकन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। हम अपनी भावनाओं के प्रति भावुक नहीं है, दूसरों के हमारे प्रति क्या भावना उसके प्रति बड़े भावुक हैं। अरे उन्होंने देख के मुझे हंसे नहीं, हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उन्होंने मेरी प्रशंसा नहीं की, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे हृदय के अंदर क्या भाव चल रहे हैं उसके प्रति मैं कुछ भी सेंसिटिव नहीं हूं। इसलिए आचार्य ग्रंथ बताते हैं, बी कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। क्या मेरे हृदय में किसी प्रति द्वेष उठ रहा है, रेड सिग्नल, एकदम तैयार हो जाइए, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, मेरा मन तो बड़ा साफ है। अच्छा, तो क्या हमें दूसरों में फॉल्ट नजर आ रहे हैं? हाँ, ये तो आते हैं, ये द्वेष का लक्षण है, ये लक्षण है, इसको नहीं रोका तो भगवान की कृपा छिन जाएगी, तुरंत वहीं पे रोकने का हम प्रयास करें। द्वेष के कारण सभी अनर्थों की ये जड़ है। वास्तव में जो द्वेष करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है, हिंसा। ये कैसे आप कह सकते हैं द्वेष करना हिंसा है, है ना। His Holiness भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बताते हैं कि द्वेष करने का अर्थ है कि हम उस व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, फिनिश, है ना। कौरवों को पांडवों से इतना द्वेष था, कितने ही तरीके अपनाए उन्होंने, जहर देकर, लक्षाग्रह में आग लगाकर, कि इनको हम फिनिश कर दें, खत्म कर दें। महाभारत के युद्ध के बाद भी धृतराष्ट्र को बोला, ये भीम है, इससे मिलो, तो भगवान ने क्या किया था, भीम की जगह भीम का फौलाद से बना हुआ स्टैचू लगा दिया। उस फौलाद से बने स्टैचू को भी इतनी जोर से धृतराष्ट्र, जो अंधा था, बूढ़ा था, इतना द्वेष था उसके अंदर, उसको भी उसने तोड़ दिया। इतना द्वेष होता है, हम किसी को देख नहीं सकते। थोड़ा सोचे, अपने एक्सपीरियंस से इसको सीखते हैं। जब कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, जब हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, आप चाहेंगे कोई आके उसकी आपसे प्रशंसा करे, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? आप उस शक्ति को बार बार अपने आसपास भी देखना चाहेंगे? क्या देखना चाहेंगे? नहीं ना, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि फिनिश हो जाए, नजर ना आए कोई, इसकी बात उसका नाम है मेरे सामने मत लेना। तो ये सबसे बड़ा वायलेंस है। वायलेंस केवल एक्शन से नहीं होता, प्रहार करने से नहीं होता, हिंसा विचारों से, शब्दों से और कार्यों से भी होती है, जिससे हम दूसरे के वेलबींग को क्या बोलेंगे, दूसरों के हितेश हित को हम आघात पहुंचाएं। वास्तव में द्वेष करने का अर्थ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम सुनेंगे हंसी आएगी। द्वेष करने का अर्थ है कि मैं जहर पीऊं और आशा करूं वो मर जाए। द्वेष करके सबसे ज्यादा हम आघात अपने आप को पहुंचाते हैं। द्वेष कर लिया, ना मैं कुछ सुन सकता हूं, कुछ नहीं अंदर प्रवेश करेगा, ना मैं चैंटिंग कर सकता हूं, ना मैं शास्त्रों को समझ सकता हूं, तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। सबसे बड़ा आघात मैं अपना हानि अपनी कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या है कि ये गरम लाल कोयला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अग्नि के समान जल रहा है ना, कितना कष्टदायक होगा। और हम इसके ये उम्मीद रख रहे हैं कि जिस व्यक्ति से मैं द्वेष करता हूं ये कोयला उसको फेंकूंगा मैं, और कई बड़ी बात है उसको मार भी देते हैं, लेकिन एक ऐसा कोयला है कि उसको फेंकने के बाद ये डबल हो जाता है, हमें और अग्नि बढ़ती है। अब देखें, जब भी हमें मौका मिलता है किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष निकालने का, यानी कि उसके बाद हम शांत हो जाते हैं, उसके बाद और अग्नि प्रज्वलित होती है और बुरा लगता है। तो ये सबसे बड़ा वायलेंस है, आघात पहुंचाना है। और अब उसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं जो फेलियर है कि सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है, फेलियर के प्रति तो हम बड़े दयालु हैं। अरे भैया, दूसरे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, ईशा ऐसे ही रही है। उसके प्रति तो हम बहुत बहुत प्रेम रखते हैं, लेकिन जो सफल हो रहा है उसकी सफलता हमें नजर सहन नहीं होते, वो मुझसे ज्यादा कैसे सफल हो रहा है। द्वेष के कारण हम प्रथम क्या कह रहे हैं कि भैया भगवान की इतनी अच्छी सेवा मत कर। द्वेष करने का मतलब ये है, गा ले इतना अच्छा मत गा, जितना अच्छा गा सकते गा, लेकिन मेरे से अच्छा मत गा। जितना अच्छा मृदंग बजा सकता है बजा ले, लेकिन मेरे से अच्छा खबरदार जो मृदंग बजाया, मेरे से अच्छी ड्रेसिंग कभी मत करियो। यानी कि हम भगवान की सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी कम कर देते हैं। मेरे से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मत करियो, जो मर्जी कर ले, मैं हमेशा नंबर वन रहना चाहूं। और विशेषकर अगर कोई हमसे जूनियर आगे बढ़ जाए, मैंने इसको मृदंग सिखाया मेरे से आगे, असंभव। उस्ताद ने छोटू को बताया और छोटू ने आगे गैराज खोल ली, और गैराज खोलेगा उसका काम धंधा बंद। अरे इस छोटू को मैंने सिखाया था, इसको स्पैनर पकड़ना भी नहीं आता था, हथौड़ी मारने नहीं आती थी, और भी इतना बड़ा गैराज खोल लिया सर्विस सेंटर, मेरा तो खत्म, दुकान बंद। बड़ी मुश्किल है। तो इन्हें भी हम ये क्या कह रहे हैं कि भैया सर्विस कम कर दो भगवान को, गुरु की सेवा कम करो, भगवान की सेवा कम करो, बस मेरे को मेरे से आगे मत बढ़ना, बस ये सहन नहीं होता हमें। देखो कितना नेगेटिव इमोशन है, ठंडे दिमाग से सोचें। इस समय हम क्लास में बैठे हैं, उम्मीद है कि द्वेष नहीं तो होकर बैठे होंगे। ठंडे दिमाग से सोचें हैं कि कितना नेगेटिव इमोशन है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम मांग रहे, भगवान आपकी सेवा करें, सेवा करें, सेवा करें। और जब भगवान की सेवा कोई अच्छे ढंग से करता है, हमें द्वेष हो जाता है। जो भक्त लोग होते हैं वो उत्साहित होते हैं कि भक्त ने ज्यादा सेवा कर ली, अरे वाह, जहां उनको मौका मिलेगा भगवान का गुणगान करेंगे, आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बद अवस्था के कारण हम चाहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों से कारण ये शुद्ध आत्मा दूषित हो जाती है, और फिर वो केवल अपने आप को कृष्ण के रूप में देखना चाहता है। भगवान कितने विनम्र हैं आप देखिए, भगवान हमारे एक एक भाव को जानते हैं, वो जानते हैं ये कह रहा है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में मेरी ही पोजीशन लेना चाहता है, फिर भी भगवान कृपा करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, चलो मेरा नाम लो, द्वेष से लो, मेरे कथा का गुणगान करो, सुनो, पर करो धीरे 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 शुद्ध हो जाओगे। हमें मालूम चल जाए कि कोई हमसे द्वेष करता है, हम उसके पास अपने पास फटकने भी नहीं देंगे, भगवान पूरी आज्ञा देते हैं, हम उनका भी श्रृंगार भी कर लें, उनको भोग भी लगा लें। मालूम है इसके अंदर कितना द्वेष भरा पड़ा है। ये है भगवान की परम, जिसे कहते हैं भक्त वत्सल, कि भगवान की अंदर कितनी कृपा भरी है, फुल ऑफ कंपैशन। तो शाम जूनियर से भी कर सकते हैं, इक्वल से भी कर सकते हैं और सीनियर से भी कर सकते हैं। जब आप हमसे कनिष्ठ भक्तों से डील करते हैं, जूनियर से डील करते हैं, तो एक सीनियर तीन प्रकार से जैसे डीलिंग कर सकता है। ये हमारा सोचना नहीं है, ये पूरा एनालिसिस इन्होंने भक्ति धीर स्वामी महाराज ने किया है, अपनी पुस्तक उनकी है सरेंडर, बहुत सुंदर पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो उसमें बता रहे हैं कि तीन तरीके से कोई एक भक्त जूनियर से डील कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि तू जैसा है वैसा ही बना रही हो, यही तेरा स्वरूप है, मैं तेरा सीनियर तू मेरा जूनियर, जीवन सुबह कृष्ण नित्य दास माई दास, तू दास ही रहना हमेशा, वही रहना हमेशा, कोई इससे मैं भी खुश हूँ आप भी खुश रहोगे, इसी उसको आगे नहीं बढ़ने देना, वैसे का वैसे ही रखना। ये है द्वेष, इससे लगता कि वो भक्त तमोगुण में है। दूसरा तरीका ये है कि उस जूनियर को हाथ पकड़ के ऊपर उठाना, चल यार ऊपर बन, कब तक यहाँ रहेगा, शाबाश, उसको हेल्प करना ऊपर बढ़ाने के लिए। इसका अर्थ है कि उसके अंदर द्वेष नहीं है। लेकिन जो असली वैष्णव है, वो सबसे महान वैष्णव, वो क्या करते हैं, वो उस जूनियर भक्त के नीचे जाकर उसको पुश करते हैं। ये है सेवकों का सेवक, और ऐसा करने के लिए वो बड़े से बड़ा खतरा भी मोल ले लेते हैं। जैसे कि शीला प्रभुपाद कहां गए, पॉवरी स्ट्रीट में, और ऐसे गिरे से गिरे व्यक्तियों के प्रभुपाद ने ऊपर उठाया, और कितना बड़ा रिस्क लिया, कितना बड़ा रिस्क लिया, वृंदावन छोड़ के बॉबरी स्ट्रीट में प्रभुपाद के मेरे न्यूडिस कैंप में चले आते थे, जहाँ योग युवतियां नग्न घूम रही हैं, उनको भी प्रभुपाद ने उठा कर लाए यहाँ पे और उनको भक्त बनाया, कितना सेक्रीफाइस किया प्रभुपाद जी ने। तो ये सर्वोत्तम स्थिति है अपने जूनियर से डील करने के लिए, कि हम नीचे जाकर उसको ऊपर उठाएं। कई बार हम किसी की मदद भी करते हैं तो भी कृष्ण भाव में मदद करते हैं, किसको मालूम चले कि मैं कितना महान हूं, एक एहसान करते हुए कि ये याद रखे मैंने कभी इसकी मदद की थी। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इस ढंग से मदद करते हैं बिना कोई आशा रखे, और उसको अपने से भी ऊपर उठाते हैं। प्रभुपाद कहते थे मैं चाहता हूं कि मेरे यहां पर हजारों आचार्य बने जो मुझसे भी ज्यादा लिखें। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि और पुस्तकों को लिखो और प्रचार करो, इससे प्रभुपाद और प्रसन्न होते हैं। तो ये तरीका है जूनियर से डील करने का। हम पहला देखते हैं रामानुजाचार्य जी के, इसमें गुरु कौन थे, यादव प्रकाश जो मायावादी थे, है ना, तो यादव नहीं रामानुजाचार्य जी के, तो बोल रहे थे मायावादी थे, वो बोल रहे थे भगवान की आंखें लाल हैं ऐसे जैसे बंदर का पृष्ठ भाग, तो रामानुजाचार्य को बहुत क्रोध आया, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने फिर भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, इसलिए यादव प्रकाश उनके बहुत हर्ट हो गए और बाद में उन्होंने अपने ही शिष्य को मरवाने का प्रयास किया। इतना द्वेष कई बार हो जाता है। ओके, तो जो हमसे नए आए हैं भक्त, उनको हमें आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। ये वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है हम कैसे भक्तों से व्यवहार करते हैं। केवल काना काना राधे राधे करते रहें और उसके बाद भक्तों से सही व्यवहार करना ना सीखें, तो ये कोई भक्ति में एडवांसमेंट के लक्षण नहीं है। फिर है कि हम अपने समान के भक्तों के साथ कैसे डील करते हैं। अक्सर हम जब भक्त इकट्ठे होते हैं, समान के भक्त इकट्ठे होते हैं, तो अपना ही गुणगान करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स हम खुद बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया, या मिलकर किसी दूसरे भक्त के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तो ये लक्षण नहीं है। अपने समान के भक्तों को हमें और प्रेरित करना चाहिए और उनकी सफलता में हमें उनको सहयोग देना चाहिए, और सीनियर्स के साथ हमें देखना चाहिए कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त करें। अगर हमारे हृदय में सीनियर्स को लेकर थोड़ा सा भी द्वेष है तो ज्ञान का संचार वहीं रुक जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि हमसे वरिष्ठ भक्त हैं, उनको ज़्यादा प्रशंसा ज़्यादा सत्कार मिल रहा है, तो हम भी देखते हैं हम भी एक दिन महाराज बनेंगे, ऐसी डंडा हाथ में होगा, लोग प्रणाम करेंगे, इतनी बड़ा राजभोग आएगा, यूँ करेंगे, है बहुत अच्छा लगेगा, है ना, आगे नाम भी लग जाएगा हिज होलीनेस, कितने आनंद है, पूरा दिन घूमते रहेंगे इधर उधर बस, नहीं, बहुत बड़ी तपस्या है। तो हमें जो हमसे वरिष्ठ भक्त हैं उनके गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। और भागवत में बताया गया वरिष्ठ भक्त को देख कर कैसे नाचना चाहिए, जैसे मोर नाचता है मानसून के बादलों को देख कर, ऐसे नाचना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें एक माध्यम मिल रहे हैं जिनके कारण हम ज्ञान प्राप्त करके अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं, हमें तो बहुत फॉल्ट्स नजर आते हैं। फॉल्ट सब में है, दोष तो सब में है। कले दोष निधि राजन, दोषों के सागर है। अस्ति एक महान गुण, इनमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परमरजेत, ये भगवान के नाम का जप करते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव एकादशी के दिन था, वो कहते थे कोई खबरदार गलती से भी मुझे किसी वैष्णव की बुराइयों का वर्णन ना करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। नहीं नहीं प्रभु सुन तो लो, उसने वास्तव में गलती की है, अगर उसने वास्तव में भी गलती की है तब भी मुझे नहीं सुनना। सेल्फिश होना चाहिए, अपनी भक्ति के बारे में सोचो, नहीं सुनना भैया, जो मर्जी वो करे, मुझे नहीं सुनना, ये आचरण होना चाहिए हमें भक्तों के साथ व्यवहार करने के लिए। तो ऐसे बहुत सी बारे बातें अवसर होंगे जब लोग भी हमसे द्वेष करेंगे। शीला प्रभुपाद जैसे हम लेक्चर होते प्रभुपाद लीलामृत में सुन रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में गए और वो व्यास आसन में बैठे थे, इसी को लेकर लोगों को द्वेष हो रहा था कि ऊपर की सीट पर क्यों बैठे हैं। फिर लोगों ने उनसे पूछा आप रॉयल ट्रेन में क्यों आए। तो अक्सर भक्त लोगों को जब देखते हैं कि उनके पास कुछ ऐश्वर्य है तो साधारण व्यक्ति बड़े द्वेष हुए करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने उसको बड़े प्रेम से उसको हैंडल किया। कई बार प्रभुपाद व्यासासन में नहीं बैठते थे कि नए लोग हैं इनको बुरा लगेगा। एक बार कोई भक्त आया, देखा प्रभुपाद की गुरु पूजा हो रही है, सब उनके पाँव पर फूल चढ़ा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, बोले ये क्या है भगवान बन के घूम रहे हो यहाँ पे। तो फिर प्रभुपाद ने समझाया कि ये जो मैं कर रहा हूँ गुरु परंपरा के बिहाफ पर सारा मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ, गुरु परंपरा को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो हमें कई बार पब्लिक में जाके ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि लोगों के अंदर द्वेष उत्पन्न हो। कई बार भक्त लोग जब बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, हमारे जब एक नई नई गाड़ी आई थी तो ड्राइवर कोई भक्त को ले गया तो बाहर वेट कर रहा था, तो एक आए व्यक्ति आए, वो आगे पीछे देखने लगे नई गाड़ी को चमकती हुई, 10 बार आगे पीछे घूमे, बोले किसकी आए, बोले मंदिर के, कह रहे बड़ी ऐश करते हो अपा पागल है, हम पागल हैं ऐसे दिन रात करते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी मेरे पास छूटा हुआ स्कूटर है तो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है साधु में, कमाल है, बड़ी ऐश करते हैं। तो एक द्वेष उत्पन्न होता है, क्या कर क्या रहे हैं। तो भक्तों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए पब्लिक में कि अननेसेसरली किसी का हम द्वेष जागृत करें। और हम देख सकते हैं इस द्वेष के कारण हम जब भी नहीं कर पाते सही। कोई द्वेष का अर्थ है कि मैं अपने को सर्वोत्तम मान रहा हूँ, जब मैं अपने को सर्वोत्तम मान रहा हूँ तो भगवान से सेवा कैसे मांग सकता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमानिना मान दे, जब मैं दूसरों को मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं जप कैसे कर सकता हूँ। तभी तो भक्तिनाथ ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, सकले सम्मान कर दिया शक्ति देहनाथ यथा यथा, तबे तो गाइबो हरि नाम मुखे अपराध बेहत। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सबका यथारूप सम्मान कर सकूं, ताकि तभी तो मैं अपने मुख से हरि नाम ले पाऊंगा और अपराधों से मुक्त हो पाऊंगा। जब तक मैं दूसरों को आदर देना नहीं सीखूंगा, बिना आदर की अपेक्षा किए हम हरि नाम सही ढंग से नहीं ले सकते, गिनती पूरी कर सकते हैं हरि नाम नहीं ले सकते, हमें दूसरों को आदर देखना सीखना चाहिए। तो देश से हम अब कैसे टैकल करें, कैसे हम इससे बचे, समय होता जा रहा है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन 5 मिनट में माइंड अप करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है अपने हृदय से द्वेष को निकालने के लिए कि प्रत्येक भक्त को विचारशील होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोटी शुड बी एज थॉटफुल एज नॉन डिवोटीज आर स्पेकुलेटिव। जैसे एक अभक्त लोग स्पेकुलेटिव होते हैं, मानसिक अटकलें करते हैं, वैसे एक भक्त को विचारशील होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ऑनेस्ट रहें, अपने प्रति तो ईमानदार रहें, भक्ति ईमानदारी का प्रोसेस है, भक्ति में बेईमानी चल ही नहीं सकती। एकदम खालिस 24 कैरेट, थोड़ा सा भी मिश्रण नहीं, इतना हमें ईमानदार होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, अभी है नहीं, कोशिश मान तो लें हम बेईमान हैं, और जाने कि हाँ मेरे अंदर द्वेष है, जैसे हम अपने अंदर द्वेष को डिटेक्ट करें तभी कहते हैं, यही कारण है कि मेरी अभी तक इंद्र तृप्ति से रुचि समाप्त नहीं हुई, यही कारण है कि मेरे भौतिक आकर्षण बने हुए हैं, यही कारण है अभी तक मुझे कोई प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं हुई, कोई कन्विक्शन नहीं है, यही कारण है कि कुछ भी ज्ञान हृदय में प्रकट नहीं हो रहा, यही द्वेष है, ये सब कुछ रोक रहा है। तुरंत इसको पकड़ना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जितना हमारी भौतिक चेतना होगी उतनी ही मात्रा में द्वेष होगा। ज्यादा द्वेष का अर्थ है आसुरी गुण। हिरण्य कश्यप के अंदर कितना द्वेष भरा है कि भगवान को मारना चाहता है। हमारा ऐसा द्वेष नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भोगने की प्रवृत्ति द्वेष का लक्षण है। तो एडवांसमेंट, भक्ति हमने कितना एडवांस कर गए, इसका लक्षण ये है कि हम द्वेष से रहित होने का प्रयास कर रहे हैं। एडवांसमेंट, भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण ये है कि हम बहुत आतुर हैं, इच्छुक हैं अपने दोषों को सुनने के लिए, दूसरों के दोषों को सुनने के लिए नहीं, अपने दोषों को सुनने के लिए हम आतुर हैं कि कृपया करके बताइए, और फिर उन दोषों पर कार्य करने के लिए भी आतुर हैं कि हम अपने इन दोषों को दूर करना चाहते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन हम निर्मित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और द्वेष से रहित हो सकते हैं। और समय समय पर हमने अपने विचारों को देखना चाहिए, हमारे विचार कैसे हैं। हम अपने ना तो शब्दों को देखते हैं, हम केवल अपने कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बस ये बहुत ही स्थूल मानसिकता वाली बात है। सारे कार्य विचारों से उत्पन्न होते हैं और विचार हमेशा हमारे साथ रहते हैं और विचार हमारे सबसे ज्यादा निकट है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ट्रेनिंग ऑफ द सटल बॉडी। अपनी मानसिकता को बदलना ही भक्ति है, तो अपनी मानसिकता के विषय में जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में हम भक्तों से उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन अगर भक्ति में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला गया कि भक्तों को कम से कम दिन में 1 घंटा निकालना चाहिए अपने बारे में सोचने के लिए, क्या कर रहा हूँ। कुछ भक्तों की बहुत अच्छी आदत है, वो डायरी मेंटेन करते हैं। जैसे एक दुकानदार दुकान बंद की तो लिखता भी है, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या बेचा, कितना स्टॉक रहेगा, कल क्या करना है। अधिकांशतः भक्त लोग हमें करते नहीं है, हम भक्ति को तो साइड बिजनेस समझते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझते हैं, और बिजनेस अपना बिजनेस है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड थोड़ी है, जैसा चलने चलने दो। लेकिन जो गंभीर भक्त होते हैं, हमारे हैं आश्रम में कुछ गंभीर भक्त, वो डायरी मेंटेन करते हैं और लिखते हैं क्या चेतना रही, क्या गलती हुई, क्या दोष हुए, क्या हुआ, कल कैसे करूँगा पूरा। इससे हम अपने आप को ट्रैक पे रखते हैं, तब हम अकेले हैं, कोई दिखावा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं। एक नंबर दो, हम देश से कैसे बच सकते हैं। हृदय से, ईमानदारी से, गंभीरता से भक्तों का गुणगान करना। इस ओली देवाम ने स्वामी महाराज बताते हैं एनवी का अर्थ है इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन। डायरेक्ट अप्रिशिएट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप मुझसे बेहतर है, डायरेक्टली कर दो द्वेष खत्म हो जाएगा। और ये एप्रिसिएशन, प्रशंसा हृदय से करें, ईमानदारी से करें। कई भक्तों ने कार्तिक में ये व्रत लिया हुआ है कि कम से कम 2 भक्तों का प्रतिदिन गुणगान करना, दिखावे के लिए नहीं, ऊपरी ऊपरी नहीं, हृदय से। और विशेषकर उन भक्तों का करना जिनके मन में, हमारे हृदय में अच्छे भाव नहीं है। बोले बहुत उसमें तो गुण कोई है ही नहीं, बहुत गंदा वक्त है, ना मतलब मेरा से आप बोले गुणगान करे, देखो देखो कुछ मिल जाएगा, है ना। इंग्लिश वर्ड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का अर्थ है ये, मतलब दोबारा, स्पेक्ट मतलब देखो, दोबारा देखो फिर झुकोगे, अभी नजर नहीं, फिर दोबारा देखो, फिर दोबारा देखो, कोई ना कोई तो गुण होगा, देखो। क्योंकि दूसरे के प्रति गंदी भावना मेंटेन करने से उसका नुकसान नहीं हो रहा, जैसे बताया वो गरम कोयला पकड़ के रखने वाली बात है, जहर पीने वाली बात है और एक्सपेक्ट करें कि उसका नुकसान हो, हम खुद जहर पी रहे हैं। इसको हटाएं, इसको ऑपरेट करके बाहर करें। तो हृदय से हम प्रशंसा करें। और तीसरा, बहुत ही दृढ़ता के साथ हम प्रयास करें कि दूसरों के गुणों को देखें, दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। क्योंकि इस भौतिक जगत का नियम है कि हर चीज नीचे गिरती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमारी चेतना भी नीचे गिरती है। मौका मिलते ही हम तमोगुण में जाते हैं। तो एक पंप करके अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना पड़ता है, इसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए। थोड़ा दिन प्रयास करेंगे फालतू में इसका गुणगान की ये बंदा सुधर ही नहीं सकता, ये है ही ऐसा, हमें ऐसा लगता है होपलेस केस है। नहीं, हमें डिटर्मिनेशन के साथ इसको फिर कंसिस्टेंट एंडेवर्स चाहिए होंगे उस भक्तों में गुण को देखने के लिए। तो इस ढंग से हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसके विजय होकर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें पूरी कृपा प्राप्त होगी। भक्ति बहुत ही आनंदमय विधि है, लेकिन अपने हृदय की इस गंदगी को बनाए रखने के कारण, गंदगी सबके अंदर तबीयत बहुत जगत में है, लेकिन उस गंदगी से हम इतने आसक्त हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए भक्ति का आनंद हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहा। तो समझदारी इसी में ही है, जब हम ग्रंथों को पढ़ें, जब हम हरि कथा सुने, तो ये ग्रंथ ये हरि कथा आईने के समान है, दर्पण के समान है, शीशे के समान, देखें कैसा होना चाहिए था कैसा हूं, अन्यथा ग्रंथ पढ़ने का लाभ नहीं है। ये कोई फिल्म स्टोरीज नहीं है, कैसा होना चाहिए था हम उल्टा करते हैं, जब फिल्म में हीरो को देखते हैं तो हम सोचते मुझे ऐसा होना चाहिए था, है ना। ये भगवान के प्रति द्वेष है, ये इतनी लड़कियों के साथ नाच रहा है काश इसकी जगह मैं होता, वाह, है ना। ये डिशुम डिशुम कर रहा है, इसकी गाड़ी उड़ती भी है, सबमरीन भी बनती है, भागती भी है, मेरी गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए। उस हीरो को देखकर हम वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जो असली हीरो है कृष्ण, जो असली है उनके भक्त, हम ऐसा नहीं बनना चाहते। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं हूं, बहुत बड़ा अंतर है, प्रयास करो बस। तभी होना चाहिए, रोज अध्ययन करो, रोज सुनो, ताकि सच्चाई ये है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा के अंदर कोई द्वेष नहीं है, प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क के कारण ये द्वेष है और सारे दुख हैं। तो इस ढंग से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? भक्तों के द्वेष में और संसारी लोगों के द्वेष में क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं। संसारी लोग भी द्वेष करते हैं और भक्त भी द्वेष करते हैं। अगर देखिए भक्तों में द्वेष नेचुरल है, अगर सिंसियर भक्त हैं तो द्वेष ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वो सोचेंगे कि द्वेष हम दोनों के लिए हानिकारक है, लड़ाई करने के बाद वांछा कल्पत्र करेंगे, गले मिलेंगे और इकट्ठे नाचेंगे, ये असली भक्त है। लेकिन वो सिंसियर नहीं है, बहुत ज्यादा कंशता में फंसे हुए हैं, तो उनका द्वेष संसारी भक्तों के द्वेष से भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि खूब अपराध करेंगे और अपराध पाप से ज्यादा खतरनाक है। जो संसारी भक्त लोग आपस में द्वेष, संसारी लोग कर्मी लोग द्वेष करते हैं, वो जैसे पाप करेंगे, एक दूसरे की हत्या करा देंगे, उसका धन लूट लेंगे, वो पाप है। लेकिन भक्त लोग अपने द्वेष को मेंटेन रखेंगे तो बहुत बड़ा अपराध है, तो अपराध तो पाप से बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है, माइक।
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने सुंदर प्रवचन के लिए। मेरा दो प्रश्न था। एक प्रश्न जो आपने अपने प्रवचन के आरंभ में हम सभी श्रोताओं से प्रश्न किए थे कि कितने लोगों को दूसरों से ईर्ष्या होती है, मेरा प्रश्न इसके ठीक विपरीत है कि कभी हमें इस बात का एहसास हो कि कोई भक्त मुझसे यदि द्वेष करता है तो ऐसे में उस भक्त के संग में कैसे व्यवहार।
बहुत धन्यवाद आपका, मैं इस पार्ट को छू नहीं पाया टाइम कम होने के कारण, और मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। कई बार हमें इस बात को सुनकर बड़ा दुख होता है कि अननेसेसरी लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, अननेसेसरी लोग हमारे को गलत समझ रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं द्वेष के कारण, तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम आचार्यों के जीवन में देखें, जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है उसके प्रति द्वेष करने वाले की संख्या भी बढ़ जाती है। प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी गुरु भाइयों ने कितना द्वेष किया, है ना, हरिदास ठाकुर, संत तुकाराम, सबके अगेंस्ट सबने किया, तो ऐसे में उन्होंने कैसे डील किया, है ना। जितना ज़्यादा हम लोगों के ओपिनियन से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे हृदय में भी भौतिक चेतना है और हमारे मन में द्वेष ज़्यादा है। अगर वो व्यक्ति अपनी चेतना में नीचे गिर रहा है उसका नुकसान हो रहा है ना। अगर समझ लो एक अंबानी जा रहा है, टाटा जा रहा है, बोले भिखारी 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 जा रहा है, उसको फर्क पड़ेगा है ना? चोर है भिखारी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो जो वास्तव में दिखावा कर रहा है अमीर बनने का, अंदर से भिखारी हो, किराए की गाड़ी पे जा रहा हो चोरी करके लाया हो, और कोई बोले चोर है भिखारी हो, बाहर निकल के ऐसे पता चला क्यों बोला से वो से लड़ाई करेगा क्योंकि वो खोखला है अंदर से। जो व्यक्ति खोखला है उसके दूसरे के ओपिनियन बहुत हर्ट करेंगे, वो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा कि मेरे बारे में लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों है। लेकिन जो अंदर से भरा हुआ है कृष्णा भाना भावे से, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अमीर आदमी को भिखारी बोलो हंस के चला जाएगा, हाँ सही है भैया भिखारी हूँ, अच्छा है, इनकम टैक्स और से बचूंगा ठीक है, दैट्स बेटर। सो हम कितना दूसरों के गलत ओपिनियन से प्रभावित होते हैं इंट्रोस्पेक्शन करके हमें मालूम चल जाएगा। इसका मतलब हम अभी अंदर से पूरे भरे हुए नहीं है ना। और हो सकता है जो वो बात कर रहे हैं वो सच भी हो, हम उनकी बात को नकार भी नहीं सकते द्वेष के कारण बोल रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ सच भी हो, उसको भी देखें। ये बहुत पुराना प्रश्न है बहुत पुराना प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत लंबा है, कई पुस्तकें लिखी गई हैं इसके ऊपर, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। लेकिन इसका शॉर्ट में आंसर आते हैं, प्रभाव बताते हैं कि अपने फ्री विल का, इच्छा का गलत उपयोग।
एक प्रश्न और था जी,
माइक आपके पास है
मैंने आरंभ में भी दो प्रश्न आपको कहे थे। तो दूसरा प्रश्न ये था कि जब कोई भक्त हमें अप्रिशिएट करता है तो उस समय हम किस चेतना में हमें होनी चाहिए, और दूसरा कभी कभी भक्त चाहे प्रेमवश या अति उत्साहपूर्वक वो हमें ओवर एप्रिशिएशन करने लगते हैं, ग्लोरिफिकेशन, तब हमें कैसे डील करना चाहिए।
अब आपको एक स्टेप आगे चला गया कि द्वेष दूर करने के लिए कोई आपके पास, अब ऐसा ना समझे कोई भक्त आपकी प्रशंसा करे तो मुझसे द्वेष करता होगा तभी प्रशंसा कर रहा है कि आपने सुना लगे लक्षण हो गया, आप आप ही मुझसे द्वेष करते तभी प्रशंसा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर समझो कोई भक्त हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमें उसको बहुत ही एटिकेट्स के साथ स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारे विषय कम्युनिकेशन वर्कशॉप था, उसमें सिखाया गया ये कि कोई प्रशंसा कर रहा है तो बोले नहीं 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 प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा लड़ाई कर रहे हैं उसके साथ। क्योंकि अगर वो उसको हम बोलने नहीं देंगे तो उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, ये हमारी सेवा है। ददाति प्रति घृणाति, एप्रिसिएशन देना भी एक देने का है, तो उसको ग्रहण करना है, तो उसको हाथ जोड़ के हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अंदर ही अंदर फूल जाए है ना, उसको हम तुरंत गुरु परंपरा को ट्रांसफर कर दें, बोला बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको मेरे में एक गुण नजर आए, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ गुरु एंड गुरु परंपरा है। लेकिन उसको हम बोले का मौका ही नहीं देंगे, अप्रिशिएट ही नहीं करने देंगे, तो उसका भी शुद्धिकरण रुक गया और हमारे कोई मौका नहीं मिला कि हम गुरु को और उसको ट्रांसफर कर पाए। तो अप्रिशिएट कर, स्वीकार करके खुद ना पिए, तुरंत आगे बैठ दर्पण। बोल रहे हैं कि भगवान ने काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार बताया है और द्वेष को तो मेंशन किया ही नहीं तो द्वेष नरक का द्वार नहीं है, आपका ये कहना ना, तो द्वेष नरक का द्वार नहीं है, द्वार के नरक की तरफ की सड़क है बहुत पहले आ जाता
नहीं लेके आते, वो चीज़ एक्टिफाई नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए मैम? करते हैं तो लगता है कि निंदा कर रहे हैं, सुनते हैं तो लगता है निंदा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे अगर भक्तों के बीच में परेशानी है उसको सॉल्व करना है तो एक दूसरे की गलतियाँ तो सुननी पड़ेंगी या बोलनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। उस स्थिति में प्रैक्टिकली कैसे व्यवहार होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हम भक्तों के साथ सेवा कर रहे हैं, उन्हें कुछ गलती हो गई उनसे, तो उसको डिस्कस ना करें, उसको करेक्ट ना करें, उसको सुधारें ना, तो क्या करें, है ना? हाँ, बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कैसे करें। तो बड़ा सेंसिटिव विषय है ये, और इसको बहुत तरीके से करना चाहिए। ये धुरेन्द्र गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं कि मैनेजर्स अक्सर सोचते हैं, जो टेंपल में मैनेजर्स हैं, भक्तों के बीच में मैनेजमेंट का काम कर सेवा कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमें तो अधिकार है दूसरों की गलतियाँ ढूंढना, उसको डिस्कस करना, ये हमारा अधिकार है। नहीं, बहुत सावधान रहना चाहिए किसी की गलती को डिस्कस करने के लिए। और अगर समझ लो अपने साथ के भक्त ने कुछ गलती कर दी, उसको ठीक करना है, तो बहुत तरीके से उसको ठीक करना चाहिए, उसका पब्लिकली गुणगान नहीं करना चाहिए। एक आपस की बात है, उसको हम समझाने का प्रयास करें, और ज़रूरत पड़े तो उसको डांटें भी, उसको सजा भी दें, उसको रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन सब कुछ उसके भलाई के लिए, है ना? करेक्शन के बाद उसको उत्साहित करने का प्रयास करेंगे, उत्साहित हो, उसको नीचे दिखाने के लिए नहीं। तो ये एक दक्षता एक्सपीरियंस के साथ आती है, प्रार्थनाओं के साथ आती है, खूब प्रार्थना ही। भक्ति बहुत आउटर वर्ल्ड में कॉरपोरेट सेक्टर में मैनेजमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन उन बड़े बड़े MBAs को अगर इस्कॉन में ले जाएंगे, भक्तों के समाज में, सब फेल हो जाएंगे। भक्तों के बीच में मैनेजमेंट करना, संभालना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है और बहुत तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो ये बहुत प्रार्थनाएँ चाहिए इसमें, और बहुत जागरूकता और सावधानी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे, बाद में व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, यथाय गौर प्रेमानंदे।